ये कई बिखरे हुए प्रश्न है, तो सबसे पहले हम ये जो है श्वास के बारे में, वैसे भी इस विषय पर चर्चा किया ही करते हैं। तन मन प्राणों में कौन सी रुकावट होती है जिस कारण पूरा भरा श्वास नहीं खींच? तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है पूरा भरा श्वास कहते किसको है, फिर वो कैसे लेना है, और लेने में जैसे इनकी ये जो प्रश्न में है रुकावट है, तो शरीर में कहते रुकावट वाली कोई बात नहीं होती है, वो तो शरीर की रचना ही ऐसी, सबकी ऐसी है। रुकावट का मतलब होता है किसी के लिए कम रुकावट, किसी के लिए ज्यादा रुकावट, तो रुकावट वाली कोई बात नहीं। सिर्फ इतना ही है, कोई साधक चेतना जिसकी ज्यादा विकसित है वो ज्यादा अंदर तक पहुंच चुका है, और कोई अभी नहीं पहुंचा है, कोई अभी शुरू ही कर रहा है ना। जैसे पानी कुआं खोदना हो तो पानी तो धरती के नीचे है ना, और यदि कोई प्रश्न करे कुआं खोदने में रुकावट क्या है, रुकावट वाली क्या बात है, पानी है ही नीचे, रुकावट नहीं है वो, अभी हमने खुदाई की ही नहीं है, अभी हम इस रास्ते पर चले ही नहीं है, और चलेंगे तो रास्ता तय करेंगे तो रास्ते की बातें होती चली जाएंगी, तो रुकावट वाला वो ध्यान में दिमाग में नहीं लाइएगा। हाँ, ये हो सकता है अभी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको उतना पूरा श्वास खींचना चाहे वो भी नहीं ले। तो पहली बात है पूरा भरा श्वास किसको कहते हैं, समझ ले इसको है, पूरा भरा श्वास का मतलब क्या है। तो कहने की बात दो बातें कहेंगे इस प्रसंग में, या तो एक पूर्ण योगी वो पूरा भरा श्वास ले सकता है, अर्थात जब वो श्वास खींचेगा तो इतना गहरा जाएगा कि श्वास खींचते 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 वो जो श्वास उसका मूल प्राण और प्राण का भी जो प्राण पर ब्रह्म परमात्मा है उसके साथ लीन हो जाए, श्वास खींचा और समाधिस्थ। मतलब समाधि का मतलब क्या, श्वास खींचा और लीन हो गया, बाहर श्वास आ ही नहीं रहा, इसको कहते दरअसल पूरा भरा श्वास। जैसे पानी बह रहा है, गंगा जा रही है और समुद्र में लीन हो गई और वो समुद्र रूप हो गई, इसी प्रकार श्वास हमने खींचा, अंदर कुंभक किया, कुंभक करते 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 इतना हो गया कि वो जो श्वास प्राण का भी प्राण तो परमात्मा है उसका मूल दशम द्वार के पास, तो ये तो एक अलौकिक स्थिति होती है, लक्ष्य ये हो सकता है। दूसरा, एक बच्चा भी काफी हद तक पूरा भरा श्वास लेता है, जो नवजात शिशु जिसका भी जन्म ही हुआ है वो समाधि में तो नहीं जाता श्वास भरते हुए, लेकिन फिर भी वो इतना गहरा श्वास खींचता है कि सारा शरीर उसका कंपित होता है, जब वो श्वास खींचता है अंगूठे से लेकर मस्तक तक सारा दूध तो वो थोड़ा सा पीता है, उसके शरीर में ताकत नहीं है, खड़ा भी नहीं हो सकता, बोल भी नहीं सकता है, लेकिन प्राणों में बहुत ताकत है। जितनी जल्दी जल्दी बच्चा श्वास लेता है, एक मिनट में कितने 35 है, कितना लेता होगा है डॉक्टर साहब, 40 बार एक मिनट में श्वास लेता है वो, इतनी तेजी से लेता है, एक सामान्य व्यक्ति यदि लेने की कोशिश करे सिर उसका घूम जाएगा, नहीं ले सकता है। तो बच्चा काफी हद तक पूरा भरा श्वास लेता है, बड़ी इतनी ऊर्जा प्राण शक्ति बच्चे में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा भरा श्वास ले सकता है और इसी कारण इतना इतना दूध पीता है और उसका शरीर कितना विकसित होता है और कितना बढ़ना शुरू हो जाता है काफी हद तक। क्यों? बच्चा पूरा भरा श्वास इसलिए लेता है कि उसका मन बाहर नहीं है। मन उसका बाहर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आंख पूरी बनी ही नहीं है, अभी इंद्रिय छिद्र बाहर की ओर पूरे खुले ही नहीं है। बच्चे का जन्म आत्र को नहीं दिखाई देता, आंख तो खुली है, मतलब आंख बाहर की ओर अभी नहीं देख पा रही है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसकी सूरत, मन अंदर है, आंखें अंदर ही अंदर है, श्वास सारी इंद्रिय छिद्र अंदर की ओर अभी काफी हद तक खुली है। हाँ, पूरे तो हम तभी मानेंगे यदि उन इंद्रिय छिद्रों की धारा ब्रह्म रंध्र के साथ जुड़ जाए, तो वो भी नहीं है, लेकिन अंदर की ओर बाहर नहीं है इतना कह सकते। अंदर तो वो पूरा ब्रह्म रंध्र तक नहीं खुले हैं इंद्रिय छिद्र, यदि खुल जाए वो तो समाधिस्थ है, वो जन्म भी नहीं आए, गर्भ में ही वो मुक्त है। तो अंदर चाहे ना भी पूरे खुले हो बच्चे के इंद्रिय छिद्र, लेकिन बाहर की ओर नहीं खुले होने के कारण बच्चा काफी हद तक पूरा भरा श्वास, श्वास का मतलब है फेफड़े पूरे क्रियाशील है और वहां से क्रियाशीलता होते वो पूरा रक्त का दौरा और पूरा विकसित है। ये दो स्थिति है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसके इंद्रिय छिद्र पूरे, आंखें पूरा देख सकती है, कान पूरे बाहर के शब्द सुन सकते हैं, सारे इंद्रिय पूरे, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो जितना श्वास ले, स्वस्थ व्यक्ति मतलब उसमें कोई रोग नहीं, शरीर में यदि कोई रोग नहीं है, मन भी पूरा शरीर में ही है, काम क्रोध ऐसा नहीं हो, इंद्रिय छिद्र भी पूरे विकसित हों, इंद्रिय छिद्र भी पूरे विकसित हो, फेफड़े पूरे क्रियाशील हो और लोभ लालच नहीं हो, सरल जैसा हो, तो जो वो श्वास व्यक्ति लेता है उसको कहते हैं हम भरा पूरा श्वास लेना, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से। तो कम से कम वो तो होना चाहिए, बात समझ में आती है ना। वो भी नहीं होता है, मुश्किल ये हो जाती है, उसी का कारण होता है तनाव जैसा, नींद पूरी नहीं है, कभी हार्ट में, कभी फेफड़ों में, कभी पेट में, कोई ना कोई रोग जैसे आने शुरू हो जाते हैं। यदि पूरा भरा श्वास, आप योगी वाला नहीं कह रहे हैं, बच्चे वाला भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की इंद्रियां बाहर की ओर देखती है, अभी सारे कार्य कर रहे हैं, अंदर अभी रास्ता खुला नहीं है, और फिर भी यदि कोई पूरा भरा फेफड़ों को पूरा क्रियाशील करते हुए पूरा भरा श्वास ले सके तो उसका शरीर स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ व्यक्ति पूरा भरा श्वास उसको कहते हैं। तो कम से कम वो तो होना चाहिए, तो उसकी तो ये सुबह शाम रात यही क्रिया करवाते हैं, पूरा भरा श्वास लेना तो सीख लो भाई। तो सुबह क्रिया करवाते हैं, वो करवाते हैं, और इसको करने में ही, इसको समझने में, समझने दिमाग में तो आ जाएगा जल्दी जल्दी, लेकिन करने में शायद किसी को एक महीना, किसी को दो महीने, किसी को छह महीने, किसी को साल भी लग जाए शायद ठीक हो जाए। और यदि इतना ही हो जाएगा तो शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, जो खाएंगे पूरा हजम होना शुरू हो जाएगा, कोई विकार नहीं होने वाला है। तो पहले हम वो बात करेंगे, वो पूरा भरा श्वास जिसके कारण, जिसके द्वारा शरीर पूरा पूरा स्वस्थ बन जाए स्थूल शरीर, तो वो क्या होता है। आमतौर पर जैसे वो नाक से हवा खींचते हैं, यहाँ पर कुछ जाल है और फिर थोड़ा वेग यहाँ जाते जाते कम हो जाता है, फिर वो विंड पाइप है, फिर वो फेफड़ों में जाता है श्वास। तो पूरा जितना भी हमारी चेतना के अनुसार फेफड़े पूरे से ज्यादा क्रियाशील हो सके। तो उसके लिए सीधा साधा नियम है कि ये जो ऐसे एक डायफ्राम होता है यहाँ पर कर्ण की जैसा, तो ये फ्लैट जैसा हो, पूरा नीचे से भरे, आगे भी छाती भरे, पीछे की ओर भी फैले, दाएं बाएं भी फैले, नीचे भी फैले, आगे पीछे भी हो, दाएं भी हो, और फिर धीरे धीरे ऊपर तक भी। तो श्वास भरते हुए छाती सभी ओर फैलनी चाहिए। यदि इतना ही होना शुरू हो जाए तो मानेंगे श्वास पूरा भरना आ गया है। अब दिमाग में तो बात आ जाती है लेकिन क्रिया में नहीं होता। क्यों? मांसपेशियों की रचना ऐसी हो, मसल्स ऐसे बन गए हैं, सख्त जैसे बन गए हैं, तनाव जैसा हो गया है। तो दिमाग में आ जाने के बाद भी कोशिश करते करते भी बात नहीं बनती है। और यदि युवा शरीर है तो जल्दी बन जाएगा, जैसे जैसे उम्र बनती है और तनाव पूरे फेफड़े काम ही नहीं कर पा जितने करने चाहिए। तो उसके लिए हम पहले कहते हैं पूरा भरा श्वास लेना। इसी के लिए वो सुबह श्वास की क्रिया करवाते, इधर तो कम से कम ये तो फैलाए। अब यहाँ पर देखिएगा, कई बार कहते हैं भाई जब श्वास भरना है, जैसे ये बाल्टी है ऐसे है, तो उसमें यदि पानी भरना हो तो ऊपर से पानी आएगा लेकिन पहले वो निचला हिस्सा भरना शुरू हो, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। और यदि निकालना हो पानी तो ऊपर से ऐसे उठाते चले जाएंगे। इसी प्रकार श्वास में भी करीब ऐसा है, क्योंकि नीचे का मतलब है हम ये मानते हैं कि नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ वो एक शक्ति मौजूद है, नीचे है केंद्र, वो नीचे है प्राणों का केंद्र, वो नीचे है। तो पहले नीचे से है फिर डायफ्राम नीचे मतलब जाए, ये श्वास भरे। तो इसका मतलब यह है जब डायफ्राम नीचे जाएगा, ये जो है ये छाती का और नीचे का पेट का हिस्सा है, यदि ये नीचे जाएगा तो स्वाभाविक ही ये मसल थोड़ा पेट थोड़े से बाहर को आएंगे, आने चाहिए। यानी कि पेट फैलाना है, पेट फैलाने वाली बात नहीं है, फैलाना तो फेफड़ों को है, फैलाना तो छाती को ही है, नीचे डायफ्राम को ही ऐसे और फैलाना है। लेकिन उस क्रिया में उसको करते करते थोड़ा सा ये पेट अपने आप थोड़ा सा बाहर को आए, करना नहीं है, अपने आप आएगा। इस वास्ते कह रहे हैं करना नहीं है। तो शुरू शुरू हमने श्वास भरो तो ऐसे ही करना शुरू कर दिया ना, छाती में श्वास तो अभी फेफड़ों में जाना है, पेट को ही आगे पीछे करते जा रहे हो, करना नहीं। तो छाती इतना फैल जाए नीचे की हो जाए कि ये अंदर की ओर, कम से कम इतना अंदर की ओर नहीं जाए, श्वास अंदर खींच रहे हैं, फेफड़ों को फैला रहे हैं लेकिन पेट अंदर नहीं जाना चाहिए। अब आम तौर पर ये होता है, जिनको अभ्यास है क्रिया करते हैं वो तो समझदारी से कर लेंगे, लेकिन जिस किसी को भी ऐसा बताया जाए तो श्वास लो जल्दी जल्दी, लो जल्दी जल्दी ऐसे श्वास लेते हैं ना, जैसे जितना जल्दी से लेंगे उतना ही पेट जो अंदर की ओर जाना शुरू हो, क्या कंधे ऊपर को उठने शुरू होंगे। अब पहले भी जिनों पर भी रहते हैं जल्दी जल्दी श्वास लो, और यहाँ पर भी कई ऐसा ही चलता है, वो समझ आ जाने के बाद भी इसका परिणाम क्या होता है, ये अधूरा श्वास है। ये फिर देख लो कैसे गलती क्या होती है, अधूरा श्वास क्या होता है, ये ऐसे लेते हैं ना, इसका मतलब क्या है, पेट अंदर गया और ये डायफ्राम ऊपर को उठ गया। जब ये ऊपर को उठ गया है तो फेफड़ों में जो जगह थी और कम हो गई, और कम हो गई, और क्या करे, कंधे ऊपर उठा दिए, इधर से सिकुड़ गया, इधर से भी साइड ऊपर भर, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर श्वास, बस फेफड़ों का जो ऊपर का हिस्सा है वही क्रियाशील, वही होता है, ऊपर से थोड़ा निकाला भरा, थोड़ा निकाला भरा, थोड़ा निकाला भरा। इसका मतलब क्या है, जो टॉक्सिन है ब्लड में वो पूरा ऐसा जाता है सर्कुलेशन हार्ट से होकर, वो पूरा निकाल ही नहीं पा रहे हैं, पूरा निकाल नहीं पा रहे हैं, और पूरा भरेंगे कैसे, तो धीरे धीरे शरीर में जड़ का मल दोष इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये रुकावट वाली बात नहीं है, ये क्या है, हमने जानबूझकर ऐसा बहिर मुक्ता के कारण, इसका मतलब क्या है, ये क्यों होता है, दिमाग बहुत ज्यादा क्रियाशील हो गया, बहुत सोचते हैं कैसा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, भय जैसे, शिकड़े जैसे, दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, आंखें हल्की हो, चेहरा तनाव से मुक्त हो, ऐसे जैसे चेहरे को देखकर ही पता होगा, पता नहीं कैसा चेहरा है, चेहरा खिलता भी नहीं है। तो दिमाग ऊपर ही ऊपर क्रियाशील होने के कारण जो ऊपर ऊपर से हल्का हल्का श्वास लेते हैं और नीचे फिर वो जलमा इकट्ठा इधर को और अंदर अंदर, और अग्नि मंद होनी शुरू हो जाती है। अग्नि मतलब जो खाया पिया पूरा नीचे तक जाता ही नहीं है, पूरी सफाई होती नहीं है। हम कहते हैं जी साफ हो गया, वो अंदर मल इकट्ठा होना शुरू होता है, यहाँ जड़ता पैदा होनी शुरू हो जाती है। और वो एक कहावत आती है, अगर कह देते कोई हनी, कई बार कहा करते हैं, मोटे मोटे कूले मोटे मोटे पेट, नहीं रे पूता गुरु से भी। ये इधर फैलना शुरू हो गया है, ये इधर फैलना शुरू हो गया है, ये क्या है, ये अग्नि मंद कुंडलनी शक्ति की जगाने की भगवान की, वो तो बहुत दूर की बातें हो जाएंगी, ये वृद्धा रोग के कारण हो जाता है। तो पूरा भरा श्वास लेंगे तो ये पूरा फैलना शुरू, हाँ जिसकी छाती पूरा शरीर एक सार जैसे फैला हुआ उसकी बात नहीं है, और छाती से अंदर को सिकुड़ी हुई है कंधे ऐसे, वो पेट ऐसे बाहर निकला हुआ, क्यों, अग्नि मंद हो गई, क्यों, श्वास पूरा भरा नहीं ले पा रहे, पूरी नीचे क्रियाशीलता होती नहीं है। तो कम से कम ये जब श्वास ले तो इधर भी पूरा फैले, इधर भी पूरा फैले, उसके लिए क्रियाएं करवाती हैं। जब श्वास ले इधर ये फैले, नीचे को फैले, इधर फैले, फिर बढ़ते बढ़ते यहां तक पूरा छाती फैलने शुरू हो जाए। तो ये है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पूरा भरा श्वास, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है। दिमाग से समझ लेंगे ये दिमाग की बात नहीं है, पढ़ लेंगे पढ़ने से बात नहीं, समझने से बात नहीं, इसके लिए अभ्यास लगातार करते जाए। आप पहले हमने कह दिया है जिसका शरीर बढ़िया है अग्नि है वो शायद महीने में सीख जाए, बच्चा शायद समझते ही सीख जाए, या 6 महीने या साल, और यदि सही तरीके से नहीं करेंगे तो सारी उम्र उत्तर उत्तर और खराब होता चला जाता है। डॉक्टर के पास जाना आसान हो जाएगा, दवाई खानी आसान हो जाएगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज, कम से कम भगवान की इतनी दी हुई ऊर्जा है, प्राण वायु भरा पड़ा है, चाहे कह दे पॉल्यूशन वो भी कोई नुकसान नहीं करने वाला, यदि पूरा भरा श्वास ले लें कम से कम स्वस्थ शरीर तो हो जाए, गहरी नींद आएगी, खाया पिया सब हजम हो जाएगा, तो इसको कम नहीं। फिर उसके बाद आती है साधक का श्वास कैसा होता है, वो तो बाद की बात है। साधक का श्वास फिर ऐसा होता है कि और गहरा, इतना ही है कि वो श्वास के कंपन इतने गहरे और होते चले जाएंगे कि वो पीछे का हिस्सा भी खुलना शुरू हो जाता है। नहीं तो वो कहता थोड़ा परसेंट पीछे का जो ट्री ब्रिज है वो तो खुलता ही नहीं है, वो एक्टिव होता ही नहीं है। तो जब वो पूरा और भरा श्वास लेगा और ज्यादा क्रियाशील होगी तो वो थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर भी फेफड़े खुलने शुरू हो जाते हैं, वो आम व्यक्ति में बंद ही है, वो क्रियाशील होते ही नहीं, पूरे खुलते ही नहीं है। लेकिन जब और गहरा श्वास लेंगे इधर कंठ और पीछे की ओर खुल जाएगा, वो साधक के शरीर में कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर नया विकास होना शुरू हो जाता है। वो तो और बात की, वो हमने पहले कहा ना, महायोगी एक श्वास ऐसा लेता है कि श्वास भरा और भरते भरते सारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होते होते वो अंदर के छिद्र खुलते खुले हैं उसके, और वो ब्रह्मबंध में जाकर उसकी चेतना लीन हो जाती है, श्वास भी अंदर ही अंदर जाकर शांत हो गया, वो समाधि है। तो उसके लिए फिर आगे से आगे और चरण है, आगे से आगे और बातें हैं, वो सारा पीछे की ओर खुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ ग्रंथियां हैं, एक ग्रंथि है वो अंदर जाता ही नहीं, इधर ग्रंथि है, कंठ में ग्रंथि है, तो अंदर ही अंदर प्राणों के स्तर पर, किसी में स्थूल शरीर के स्तर पर भी, शरीर में ही नई चीजें खुलनी शुरू हो जाती है। महायोगी का शरीर अंदर से एक सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होगा, ऊपर से चाहे देखने में वैसा भी होगा। तो खैर उसकी चर्चा हमने अभी नहीं करनी है, इतना कम से कम कर ले, श्वास पूरा भरा लेने के लिए अभ्यास करें, और ये अभ्यास बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। अपने कहते हैं श्वास श्वास भजन करो, श्वास तो ऊपर ऊपर खुट रहा है, बाहर ही बार धक्के पड़ रहे हैं, तो क्या भजन होगा। तो कोशिश करें इसके साथ करते हुए। तो वो जो प्रश्न था रुकावट, रुकावट कोई नहीं है, अभी रास्ता खुला ही नहीं है, अभी हम साधन पथ पर चले ही नहीं है। जिसका वो अंदर का रास्ता खुलता जाएगा खुलता जाएगा, तो अंदर अंदर ये ग्रंथियों का भेदन, फिर उसके बाद ये ग्रंथियों का भेदन होता है, वो फायर चैनल सुषुम्ना जिसको कहते कुंडलिनी शक्ति आदि, वो जागरण होते होते वो मस्तक में चेतना का प्रवेश हो जाता है। तो इसके साथ साथ श्वास के साथ साथ जो है ये जो दूसरी बात है मौन, ये देव है, देवकांत जी है, मौन रखते हैं तो मन बोलता है, ठीक है। मौन का मतलब इनका है कि जीभ से नहीं बोलेंगे, है ना, जीभ से नहीं बोलेंगे तो मन तो बात करता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब भजन करते हैं तो फुरने आते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक जैसा बात है। तो हम ये कहेंगे मौन रखने का तरीक, मौन का मतलब क्या है, मौन का मतलब होता है खाली जीवा को ही निष्क्रिय कर दे, जीवा को ही गति ना दे, इसको हम सही मौन नहीं कहते हैं, है ना। मौन का मतलब होता है गलत शब्द नहीं बोले, झूठ नहीं बोले, अंदर कुछ है और बाहर कुछ और बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अंदर कुछ है, मन में कुछ और विचार है और बाहर कुछ और बोल रहे हैं, कैसे होता है, हाँ जी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अंदर कर कहाँ से आ गए। हाँ ये छोटी छोटी बातें हैं, वो माइयों की बात है, कपड़ा खरीदने जाते हैं वो कहते हैं इतने ना मीटर, वो फलाना तो इतने दे रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हो। ये गलत बातें हैं, इनका परिणाम देखना क्या होता है। होता ये है कि जो शब्द ये इधर जीभ की क्रिया होती है उसकी गति बाहर की ओर है, अंदर कुछ हमने रोक रखा है, मन में वो नहीं है। तो होना क्या चाहिए, जो कुछ हम जीभ से बोलें, जीभ की जो कंपन है वाइब्रेशन है वो प्राणों में अंदर प्रवेश करे, अंदर, और फिर मन में और सूक्ष्म स्तरों में प्रवेश करे। लेकिन वो जो हम ऐसे बाहर कुछ अंदर कुछ, तो जो साउंड जीभ हिलाते हैं उनसे जो कंपन पैदा होते हैं वो अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि पता है अंदर नहीं है, हमें पता है जो बोल रहे हैं उसका लिंक अंदर नहीं है, तो जीभ से उठ रहे कंपन हमारे गहरे प्रवेश नहीं करते, बाहर ही बाहर, उसी को सुनाने के लिए कह रहे हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जीव की नर्व की जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो एक एक स्ट्रक्चर ऐसे है, वो बाहर की ओर बन जाती है और वो खराब होती है। तो जब जीव की रचना ही ऐसी हो गई है, जीव ऐसी हो गई है, तो जब हम नाम का उच्चारण करेंगे तो नाम जो भी उच्चारण करेंगे तो उससे उठ रहे जो कंपन है वाइब्रेशंस हैं वो भी अंदर नहीं जाएंगे, है? तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। है ना। तो जीव को हम क्रिया करने से रहित कर दें, जीव की क्रिया ना करें तो न अंदर न बाहर, है ना। तो अंदर ना बाहर तो क्रिया नहीं हो रही है, तो अंदर क्या होगी, अंदर जो द्रव्य संस्कार है वो उठने शुरू हो जाएंगे, तो उसको मौन नहीं करेंगे। बाहर से तो जीव की क्रिया हमने बंद कर दी है, चलो बाहर से संबंध टूट के गलत नहीं है, अच्छा है, कभी कभी हफ्ते में एक बार कर लें, जीव को आराम मिल जाएगा। लेकिन तब होगा क्या, अंदर जो हमारे मन के संस्कार हैं, वो जो हमने छिपाए थे, दूसरों से सामने प्रकट नहीं किए थे, वो चोरी अंदर रखी दबाए हुए, वो उठने शुरू हो जाएंगे। तो मौन से ही क्या होता है, मौन से ही वही है कि सही बोला जाए, प्यार से बोला जाए, दूसरे से प्यार से बात करें, दूसरे को अपना समझकर बात करें और सही उसके भले के लिए बात करें, उसके लिए चाहे कभी कड़वा शब्द भी हो जाए वो इतना खराब नहीं होगा, लेकिन झूठा और चापलूसी वाला शब्द वो ज्यादा अपना ज्यादा नुकसान करेगा। तो एक तो मौन का ये अंग है, दूसरा मौन का मतलब होता है जीव को हमने अंदर की ओर क्रिया देनी है, है ना। बाहर से तो रोक दिया है, तो जीव की क्रिया इस प्रकार से हो कि अंदर की ओर गति होना, कि अंदर की ओर रास्ता बनना शुरू हो जाए, उसके लिए आप कीर्तन करें। किस प्रकार, वो कल जैसे चर्चा करें, सके अंदर बैठे भगवान को सुनाने के लिए जप करें, अंदर शब्द को उठाने के लिए, इसके लिए क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे शाम को उमा का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन वो किस लिए है, वो गला हमने अपना खोलना है, और करते करते थोड़ी बहुत ही खराश हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो बंद है ना भी सारा, अंदर खुलना शुरू हो जाए। तो इस ढंग से वो जो सारी क्रियाएं हैं वो एक प्रकार से मौन की साधना हो जाएंगी। और एक छोटा सा नुक्ता और भी है मौन साधना के लिए, आप जीव की क्रिया थोड़ी ज्यादा लंबा तो नहीं कर सकेंगे, थोड़ी देर के लिए है कि जीव को बिल्कुल मुंह के ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, कहीं भी जीव को लगने ना दें, ऐसे नहीं, नीचे नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, है ना। किसी का आसरा नहीं लेना, ऊपर नीचे नहीं, टिकाना नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स, बीच में आकाश है वहां पर जीव को स्थिर कर लें, और जीव के ये पिप वहां पर मन को रख लें, वहां पर मन को टिका लें, है ना, ऊपर नीचे नहीं, यदि ऐसे करेंगे तो ध्यान ऊपर चला जाएगा। तो बिल्कुल आंखें हल्की बंद करके जीभ के सिरे को देखें और वहां से थोड़ा थोड़ा मन को अंदर की ओर, जीभ के सहारे इधर थोड़ा 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 अंदर जीभा मूल तक ले जाएं। अब बोल नहीं पाएंगे, जीभ नहीं हिल रही है ना, ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, अब कोई शब्द नहीं उच्चारण कर रहे हैं, मौन हो गया, लेकिन इतना काफी नहीं है। अंदर अंदर, बाहर नहीं भी, अंदर अंदर मुंह के अंदर जीव को बिल्कुल स्थिर कर दें, जीव को कंपन रहित कर दें, बिल्कुल कंपन रहित कर दें, तो वो शब्द क्रिया हो ही नहीं रही है और उसके जो मन के साथ जुड़ा हुआ है सारा कोई सिस्टम, तो जीव के सिरे को मन ही मन देखें, जीव के सिरे को देखते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को पीछे की ओर ले जाते चले, गले के अंदर ले जाए, है ना। तो ये मौन की साधना है। तो ऐसे दो चार मिनट भी करें, पांच मिनट भी करें, तो आपके पुरने शांत हो जाएंगे। तो कहते ना सारा दिन मौन, सारा दिन तो बड़ा मुश्किल है ऐसे करना, फिर इसकी और साधनाएं हैं, जीव की क्रिया जैसे सुबह करवा रहे थे वो सारी करिएगा अंदर की ओर गति देने के लिए। फिर और बहुत सी क्रियाएं हैं, खेचरी मुद्रा आदि है, बहुत सी साधने हैं, तो धीरे धीरे उसको अंदर करते चले जाएं, अंदर करते चले जाएं। तो मौन से हमारा मतलब इतना ही है, कड़वी वाणी नहीं बोलनी, छल युक्त वाणी नहीं बोलनी, नहीं तो अंदर सारा जमा हो जाएगा, बाहर निकलेगा ही निकलेगा, भजन क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बाहर से मौन भी रखें, उसके साथ साथ मौन के साथ साथ कीर्तन करें, जप करें, ध्यान करें, खूब मस्ती में नाचे गाएं और फिर धीरे धीरे अंदर अपनी चेतना को ले जाते चले जाएं। इस प्रकार का जो मौन है वो हमें मन को भी शांत करने में मदद मिलेगा। अब यह प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, कई संत महात्मा कहते हैं, कई कहते हैं, हमारा क्या सारे कहते होंगे। जीवन का उद्देश्य प्रभु से मिलाप है जी, यही है ना ये। अच्छा हाँ भाई, कई नहीं, वो सारे कहते हैं। तो इनका प्रश्न सीधा साधा है, वो दरअसल साधना से संबंधित तो ये इतना ज्यादा प्रश्न नहीं है, है? तो यदि जीवन का ये उद्देश्य है तो प्रभु ने हमें अपने से अलग ही क्यों किया है, तो ये तो भी भगवान से पूछेंगे, वही बता सकेंगे। लेकिन हमें क्या है, हम तो अपनी बात देखें, क्योंकि ये दार्शनिक उत्तर है, बहुत उत्तर दिए जा सकेंगे, लेकिन साधना पथ में इन उत्तरों से कोई लाभ नहीं होने का। प्रभु ने हमें क्यों अलग किया है ना, इस उत्तर यदि मिल भी जाएगा, कुछ हमारे जीवन में साधना में कोई प्रगति नहीं होने वाली। जैसे महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे जंगल में बैठा हुआ है ऐसे, है ना, ऊपर से एक सांप गिरा, ठीक है, अब क्या, ये कहाँ से आया, किसने फेंका, ये जहरीला है कि ऐसा है, है? ऐसे उत्तर खोजने की जरूरत है कि सांप को परे फेंको भाई, है ना, समझ में आता है ना। तो भगवान ने हमें अलग क्यों किया, उसका क्या प्रयोजन है, ऐसे सोचने, भगवान से मिल लो भाई। इतना तो है कि मन अशांत है, दुखी है, और यदि हम मानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, तो हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए भगवान से मिल लें, और यदि भगवान से मिल जाएंगे तो पता लग जाएगा उसने क्यों अलग किया था, है? तो प्रश्न ये होना चाहिए कि भगवान से मिलें कैसे, ठीक है कि नहीं, आता नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो उसका उत्तर हम देते चले आ रहे हैं। ये दार्शनिक उत्तर है, विद्वानों की दिमाग में खाज होती रहती है, बहुत जोड़ तोड़ करते रहते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर सब साधक बैठे हुए हैं, तो साधने श्वास की चर्चा हुई, मौन की चर्चा हुई, वही ज्यादा अच्छा है। अब ये है रवि का प्रश्न है, एक साधक को साधना कितना समय जरूरी करनी चाहिए। ये समय की क्या बात है, अभी समय से तो पार जाना है अपने, तो भी रवि है
तो बड़े जी, डर ये लगता नहीं कि समय के इस पार ना आ जाए।
नहीं, इनका मतलब है साधना का बैठ के आंख बंद करके, वो मतलब है। तो हम यही कहेंगे, तो ये जो रसोई में बैठ के रोटियां बनानी है, ये भी साधना ही समझिएगा। हाँ, साधना का अर्थ व्यापक कर ले, झाड़ू लगाना है उसको भी साधना ही समझिए, सेवा कर रहे हैं इसको भी साधना करें, किसी से बातचीत कर रहे हैं उसको भी साधना बनाए, और आंख बंद करके ध्यान सिमरन कर रहे हैं वो भी साधना ही, इस दृष्टि से। तो ये तो हम बार बार कहा ही करते हैं कि सेवा और सिमरन, ये दो चीजें बिल्कुल आपस में घुली मिली हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिमरन ध्यान करता रहे कि मुझे तो अब सेवा की कोई जरूरत नहीं है, या मैं ध्यान के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, समाधि लग जाएगी आंख बंद करके बैठने से, सेवा की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। या कोई ये कहे कि हम तो भी सेवा ही करेंगे, हम तो सेवा ही करेंगे, सेवा करते करते भगवान की कृपा हो जाएगी, ध्यान ध्यान की हमें कोई पता नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं, ये भी उतना ही गलत है। जैसे दो पांव हैं, अब दो पांव से चलेंगे ना, एक आगे एक पीछे, ये पीछे या फिर वो आगे, इसी प्रकार सेवा और सिमरन ये साधना के दो पांव हैं, तो इसको ही तो यहाँ पर ध्यान आदि के बारे में तुम चर्चा करते ही हैं, लेकिन एक ध्यान रहे, सेवा के बारे में बार बार कहने की जरूरत है। सेवा का महत्व कभी भी साधक के जीवन में कभी भी खत्म नहीं होता है। सेवा करना, रोटी बनाना सेवा है, रोटी खाना भी सेवा हो सकता है, लंगर भी है। एक बनाने वाले हैं तो इस तरीके से खाएं कि वो भी सेवा बन जाए। बोला अभी जो गांधी ने शुरू में पूछा भी था, अब देखो घंटी हो गई, आज चले जाएंगे जी, कोई बात नहीं है। अब वो सेवा करने वाले जो हैं वो कह भी कब आए, फिर उनको खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे, तो वो पहली पंगत में जाके बैठ जाएगा। सेवा करने वालों को जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो इस ढंग से समय पर आ जाएं, तो समय पर आकर भोजन करना भी जो सेवा करने वाले हैं उनकी सेवा हो जाएगी। छोटी सी बात है, हैं? नहीं तो बार बार वो बार बार कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है। तो भोजन बनाना भी सेवा है और भोजन करना भी सही तरीके से कर ले, जल्दी काम सही तरीके से हो जाएगा और भोजन परोसने वाले का मन भी शांत हो जाएगा। हाँ भी बहुत अच्छा हो गया, सभी समय पर आ गए, अब ठीक है, अब ध्यान करेंगे, सिमरन करेंगे, क्योंकि सेवा के साथ सिमरन भी तो करना ही होता है। दूसरा, एक व्यक्ति की ड्यूटी है, उसने बर्तन साफ करने हैं, घर में भी हो सकता है, बाहर भी कभी हो सकता है, तो दूसरा व्यक्ति कम से कम बर्तन वहां तो रख दे जहां पर मलने की जगह है, इतना तो कम से कम कर लीजिए, या छोटे मोटे अपने आप ही साफ कर ले। रसोई बनाई है, अब जब ने जहां से जो चीज उठाई है वहीं पर फिर रख दे। बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत महत्व की होती है। किसी ने एक मन दाल पकाई तो पूरा ध्यान से करेगा, करे खराब ना हो जाए। और कभी किसी ने दो मेहमान है, एक इतनी मुट्ठी डाल के दाल बनाई है, पता लगेगा जितना ध्यान हमने एक मन दाल पकाने में लगाया था, ये ना हो जाए, ये मसाला ही ऐसा, उतने ध्यान एक मुट्ठी दाल बनाने में भी होते। 100 व्यक्तियों की भोजन बनाना है तो खूब प्लानिंग करते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो 2 व्यक्तियों को भोजन कराना है तो भी दिमाग में सही हो, कहीं पर कोई कमी ना रह जाए। विवाह शादियों में भंडार करते हैं ना, लंगर चलता है पूरा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, कोई खराब ना हो जाए। तो वही भाव घर की रसोई में भी बना रहे, कहीं कमी ना रह जाए। क्यों? ये भगवान की सेवा है, बस ये भाव कर ले। सेवा का सूत्र ये है, ऊपर से व्यक्ति हैं जिनके निमित्त से हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम उन निमित्त के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो सीधा ही भजन है, बिल्कुल पक्का भजन है। यदि कह भी अच्छा हमने तो अपना काम कर लिया, अब तुम अपना करो, ड्यूटियां बांध ली। हाँ, ड्यूटी बांधनी जरूरी होती है, कि एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है, तो अपना अपना काम भी बांट लो, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि मैंने तो अपना काम कर लिया, अब अपने छुट्टी या पीछे कुछ भी होता रहे। एक हमने वो सुना था, एक शेख रोहन की राम उधर बैठा हुआ था, पार्क में बैठा हुआ था, उसने देखा 2 व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक गड्ढा खोदता है और दूसरा पीछे वाला मिट्टी उसमें डाल देता है, तो चले हुए सारे पार्क में घूम रहे हैं। एक ने गड्ढा खोदा और दूसरे ने ऊपर से मिट्टी डाल दी, वो देख रहा है शेख ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई क्या बात है, आप क्या कर रहे हैं? कहते हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कहते ऐसी कैसी ड्यूटी हुई है, गड्ढा खोद रहे डाल रहे? कहते जी दरअसल हम तीन लोग होते हैं, तीन लोग होते हैं, तो एक की ड्यूटी होती है गड्ढा खोदना, दूसरे की ड्यूटी होती है पौधा लगाना, और तीसरे की ड्यूटी होती है उधर मिट्टी डालना, और दूसरा वाला छुट्टी पर है तो हम अपना काम करते चले जा रहे हैं। हम अपनी सेवा पूरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ड्यूटी बांटने से सेवा नहीं होती है, है? मेरा काम तो रसोई रोटी बनाना, भाई इतनी रोटी, और दूसरे काम दाल बनाना, दाल पता नहीं कम होगी ज्यादा हो गई। तो ड्यूटी चाहे बांट लें, लेकिन आपस में पूरी समझदारी भी हो कि मैंने ये काम किया है और दूसरे का ये काम है, और दोनों में तालमेल है कि नहीं है। इन गड़बड़ तो ने पूछ ले भी, तेरा काम हो गया, आज ये कमी रह गई तो उसकी मदद कर दे भी, उसको सलाह भी दे दो। इस प्रकार से करेंगे, एक यूनिट बन के करेंगे, तो वो एक आपस में एक प्यार का संबंध, भाव का संबंध कि हम सभी साधक हैं, ये बन जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा सामूहिक साधना, सामूहिक सेवा, जिस प्रकार समूह में हम साधना करते हैं, इकट्ठे बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, अकेले से करने से अच्छा है। इकट्ठे बैठकर ध्यान बैठकर साधना कर रहे हैं, अकेले करने से ज्यादा लाभ होता है। इसी प्रकार सामूहिक सेवा भी हो, चाहे वो रसोई की हो, चाहे कहीं की हो, आपस में पूरा तालमेल होते हुए, जैसे सामूहिक साधना में होता है ना, एक इधर बोलना सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसी प्रकार सेवा में भी, यदि रसोई में है चाहे घर में भी है, बहने हैं, सास बहू हैं, वो माता, सब जो पूरा एक योजना बनाकर, और सब जगह ही ऐसा करना ही पड़ता है, तो आपस में मिलके, और किस लिए? परमात्मा की सेवा करनी है, तालमेल बैठाते हुए आपस में मिलकर परमात्मा की सेवा करनी है। क्योंकि इस भाव से किया जाएगा तो वो साधना से कभी कम नहीं होगी। तो अभी समय थोड़ा सा एक दृष्टांत देते, बहुत पुराना दृष्टांत है, भगवान की सेवा करने का क्या मतलब होता है। अकबर और ये तानसेन और हरिदास, ये तीन की कथा है। तानसेन अकबर के, हाँ, दरबारी है, राग गायक थे, दरबारी गायक थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो अकबर के मन में कभी ये ख्याल आया कि यदि ये तानसेन इतना बढ़िया गाते हैं तो इनके गुरु, सीखा कहीं से होगा, तो इनके गुरु कैसे गाते होंगे? तो तानसेन से पूछा, आपके गुरु जी? कहते हाँ जी हाँ, वृंदावन में है, उन्हीं से आपने सीखा? कहते सब उनकी कृपा है। तो वो कैसा गाते? कहते जी वो क्या गाते हैं, मैं तो ये बता ही नहीं सकता, इसका वर्णन कर ही नहीं सकता, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो अकबर कहने लगा भी कभी उनसे भेंट कराओ, कभी उनका संगीत सुनने का समय दो, तो उनको बुलाओ यहाँ पर। कहते जी ऐसे वो नहीं आते, वो कहीं नहीं जाते, अपने मस्त है, अपने भाव में गाते हैं, भगवान के प्यार में गाते हैं। नहीं नहीं कहते, रथ भेजो, ये भेजो, इतना कहते, वो पैसे के लिए नहीं गाते हैं, मान के लिए नहीं गाते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। तो लेकिन अकबर पारखी था, कहते अच्छा यदि वो नहीं आएंगे चलो हम चलते हैं। तो सूचना, कहते सूचना सूचना की कोई बात नहीं, आप चलिएगा। तो खैर अकबर तानसेन चले, तो तानसेन को तो सारा पता ही था कि ऐसे ऐसे वो सुबह उठते हैं और वीणा लेकर भगवान का भजन गाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो पता था सारा तानसेन को, वो पूरा उन्होंने योजना बना ली, और वो सुबह सुबह वो डिकुंज वहाँ पर है हरिदास का, वृंदावन में जिन्होंने देखा होगा, झाड़ी झाड़ खड़ी की, वहां पर सुबह चले गए आराम से। तानसेन कहते बोल चाल नहीं, हलचल नहीं करनी है, तो चुपचाप वो दीवारों पीछे हो गए, झाड़ों में बैठे हुए हैं। हरिदास ने अपना राग अलापना शुरू किया और खूब मस्ती में खूब प्यार से गाते रहे। शुद्धारा बह रही है, कंप हो रहे हैं, सारा शरीर नृत्य कर रहा है, वातावरण नृत्य कर रहा है। और करते करते अकबर तो बिल्कुल मुग्ध है, कहते ऐसा संगीत मैंने कभी सुना ही नहीं, ऐसा संगीत। पूरा विश्राम हो गया, सब कुछ हो गया, तो कहते आए हैं तो उनके चरणों में नतमस्तक भी हो गए। अकबर ने जाकर प्रणाम किया, ऐसे ऐसे किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। खैर, लेकिन अब अकबर के मन में ये प्रश्न है कि इतना अलौकिक जैसा संगीत, ये तानसेन तुम भी तो इतना अभ्यास करते हो, इतना अभ्यास करते हो, उनसे सीखा भी है, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं होगा ऐसा लगता है, लेकिन तुम्हारी वाणी में और इनकी वाणी में इतना अंतर क्यों है, कैसे है? तो तानसेन कहता, यदि आप क्षमा करें तो मैं उसका उत्तर देता, मुझे पता है उत्तर क्या है, अंतर क्या है। तो तानसेन कहने लगा कि मेरे गुरु तो जो ब्रह्मांडों के मालिक परमात्मा है उनके लिए गाते हैं, उनके प्यार में गाते हैं, और मैं तो आपका दरबारी हूँ, मैं तो आपके सामने गाता हूँ, आपके लिए गाता हूँ, आपको खुश करने के लिए गाता हूँ। कहाँ वो, हाँ, ब्रह्मांडों के मालिक कहाँ, आप कहाँ, मैं, तो ये अंतर है। तो सेवा में भाव में यही विशेषता, यदि हम सेवा भगवान को सम्मुख करते हुए करेंगे, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, सेवा का मतलब ही होता है मैं सेवक हूँ। फिर वो एक तिनका भी उठाया, बर्तन भी मला और ये भी किया वो भी किया, बहुत बड़ा अंतःकरण की शुद्धि का साधन हो जाएगा। सेवक के मन में तो ये आता है कि सारे काम मैं ही कर लूं, ये नहीं कि दूसरा नहीं करे, हर हाथ पैर समय आदि आदि से कोई भी मेरा समय ऐसा व्यर्थ ना जाए। तो सेवा का मतलब ही, और वो भजन से किसी भी दृष्टि में कम नहीं होना चाहिए। बस हमारा ख्याल है प्रश्न को उत्तर हो गए हैं और समय भी हो ही गया है। तो कल फिर ये जो इनका प्रश्न है कि जब तक में क्या रखा है भाई, पढ़ना सीख, तो इसकी विचार कल करेंगे। इतना कहकर ओम का उच्चारण करके अनंत सुखी ना।